नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खोजी पत्रकारिता को लेकर भारत के चीफ जस्टिस के बयान पर उसी तरह की प्रतिक्रिया आई जिस तरह दुनिया भर के खोजी पत्रकारों की मदद के लिए फंड बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों मामलों को एक तराजू में नहीं रख सकते, लेकिन दोनों ही मामले मीडिया के भीतर गायब हो चुकी खोजी से लेकर सामान्य पत्रकारिता की बहस को पब्लिक के बीच लाने में मदद जरूर करते हैं। भारत में तो खोजी क्या रूटीन पत्रकारिता गायब है। बात खोजी की हो रही है तो आज ही एक खोजी रिपोर्ट आई है वॉशिंगटन पोस्ट में। भीमा कोरेगांव केस के अभियुक्तों के इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर पत्रकार नीहा मसीह की यह तीसरी बड़ी रिपोर्ट है। क्या इस तरह की कल्पना भी भयानक नहीं है कि आपके लैपटॉप में कोई स्पाईवेयर जासूस प्रवेश कर जाए, आपकी तरफ से किसी को मेल भेजने लगे और उसमें किसी आतंकी योजना का जिक्र कर दे और कुछ दिनों बाद आतंकी साजिश के आरोप में आप गिरफ्तार हो जाएं। इस रिपोर्ट से केवल जेल में बंद किसी व्यक्ति के जीवन के सवाल नहीं जुड़े हैं, बल्कि सिस्टम की वैधता को भी गंभीर चुनौती मिलती है। क्या किसी को इस तरह से आतंक के केस में फंसाया जा सकता है? जून 2018 से भीमा कोरेगांव केस में बंद रोना विल्सन अकेले नहीं है। अन्य अभियुक्तों के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की फोरेंसिक रिपोर्ट कई बार आ चुकी है। तीन तीन इंटरनेशनल फोरेंसिक लैब की जांच में पाया गया है कि रोना विल्सन के फोन और लैपटॉप में संदिग्ध दस्तावेज डाले गए और फोन की जासूसी की गई। रोना विल्सन के फोन का बैकअप डेटा मौजूद होने के कारण फोरेंसिक जांच हो पाई है। उनके वकीलों ने एमएनएसटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब को जांच के लिए सबूत दिए। एमएनएसटी ने अपनी जांच में पाया कि गिरफ्तार करने से कुछ समय पहले रोना के फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की गई थी। जुलाई में जब ग्लोबल मीडिया कंसोर्टियम और वायर ने मिलकर पेगासस पर रिपोर्ट छापी, तब यह बात सामने आई कि भीमा कोरेगांव के कई अभियुक्तों के नंबर पेगासस की संभावित सूची में हैं। इन आरोपियों में रोना विल्सन पहले हैं जिनके फोन में पेगासस होने की पुष्टि हो रही है। इसी साल फरवरी में नीहा मसीह ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक और रिपोर्ट लिखी थी कि अमेरिका की फोरेंसिक जांच करने वाली कंपनी आर्सेनल ने भी पाया है कि रोना विल्सन के लैपटॉप में 2 साल से कोई जासूसी सॉफ्टवेयर घुसा हुआ था। किसी अज्ञात जासूस ने रोना के ईमेल से माओवादी संगठनों को पत्र लिखा और कुछ समय बाद रोना विल्सन आतंक के आरोप में गिरफ्तार हो गए। इस रिपोर्ट में एनआईए का बयान छपा है कि जांच एजेंसी उसी लैब से रिपोर्ट लेती है जिसे कोर्ट मान्यता देता है। खुद आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने माना है कि पेगासस स्पाईवेयर से उसके उपभोक्ताओं के फोन हैक किए गए हैं। एप्पल ने पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ पर हर्जाने के लिए मुकदमा किया है। क्या आप भी सरकार या जांच एजेंसी यह नहीं मानेगी कि रोना विल्सन या अन्य लोगों के फोन में छेड़छाड़ हुई होगी और संदिग्ध दस्तावेज प्लांट किए गए होंगे? दुनिया भर के देश इसी एमनेस्टी इंटरनेशनल सिटीजन लैब की रिपोर्ट के आधार पर अपने देश में जांच कर रहे हैं। अमेरिका ने एनएसए को बैन कर दिया है तो भारत सरकार को संदेह तक नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं? राज्यसभा में सरकार ने कहा है कि पेगासस बनाने वाली कंपनी पर बैन लगाने का कोई विचार नहीं है। जिस देश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर तमाम रिपोर्ट मैनेज हो जाती हो, उस देश में अगर किसी और एजेंसी से सवाल उठ रहे हैं तो क्या जांच एजेंसी और कोर्ट को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए?
रवीश, अरिस्टोटल ने कहा था कि पब्लिक किसी आर्टिस्ट या मैन ऑफ लेटर से बेटर जज है आर्ट या लिटरेचर की। ये सेक्शन 45 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो एक्सपर्ट एविडेंस को रेलिवेंट बनाता है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ साइंस है, आर्ट है, फॉरेन लॉ है, तो जो उसका एक्सपर्ट है उसकी एविडेंस ली जा सकती है। फिर सेक्शन 45A ये कहता है कि अगर कंप्यूटर में स्टोर्ड कोई डेटा है उसकी एविडेंस देनी है तो ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो आईटी एक्ट के सेक्शन 79A के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होगा, उसका ओपिनियन लिया जाएगा। लॉ में कहीं ये बार नहीं है कि किसी फॉरेन एक्सपर्ट्स की एविडेंस रिकॉर्ड ना की जाए। आज तो वीडियो एविडेंस भी रिकॉर्ड होती है, वहीं से बैठे बैठे एविडेंस दी जा सकती है। समझना यह है कि हमारे यहां एक प्रिंसिपल है फेयर ट्रायल का, स्पीडी ट्रायल का, ये सब्सटेंटिव राइट है किसी भी अभियुक्त का। फिर ये मुद्दा आता है कि क्या बेनिफिट ऑफ डाउट भी डिनाई किया जा सकता है। ये जो जितनी रिपोर्ट्स बाहर से आ रही हैं, इससे प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो रहा है और ऐसे में कन्विक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम मुझे नजर आती है। अब आप देखिए कि जो एक्सपर्ट इविडेंस है वो अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो उसके सामने रिजेक्ट की जाती है। एरिस्टोटल की ही तरह हमारे यहां भी देश का कानून ये है, गणेश दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जजमेंट है कि चश्मदीद गवाह की जो इविडेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवाह कह रहा था कि गन शॉट्स थे, मेडिकल रिपोर्ट थी कि कोई इंजरी नहीं है, गवाह की बात मानी गई। इसी तरह राजेंद्र प्रहलाद राव का केस है जिसमें फॉरेंसिक इविडेंस ये कह रही थी कि कोई इविडेंस रेप और मर्डर की नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांशियल इविडेंस ये थी कि रेप और मर्डर हुआ है। कोर्ट ने फॉरेंसिक इविडेंस रिजेक्ट की।
वॉशिंगटन पोस्ट की तीन तीन खोजी रिपोर्ट हवा में नहीं है। तीन तीन इंटरनेशनल फॉरेंसिक लैब की जांच दावा कर रही है। ये वो लैब है जिनकी रिपोर्ट को दुनिया की कई सरकारें गंभीरता से लेती हैं। आर्सेनल की रिपोर्ट के आधार पर ही टर्की में कई पत्रकारों की जान बची थी। रोना विल्सन के मामले में जिस आर्सेनल ने फॉरेंसिक रिपोर्ट दी थी उसी की रिपोर्ट के आधार पर टर्की की न्यूज वेबसाइट ओडीए टीवी के 13 पत्रकारों को आतंक के आरोप में 6 साल जेल में बिताने के बाद रिहा किया गया था। इन पत्रकारों पर एक आतंकी संगठन का समर्थन करने का आरोप लगा जो सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था। इसी तरह के आरोप भीमा कोरेगांव केस में भी हैं। आर्सेनल ने अपनी जांच में साबित कर दिया कि ओडीए टीवी के पत्रकारों के कंप्यूटर में हैकरों के जरिए कई संदिग्ध दस्तावेज डाल दिए गए जिसके बारे में पत्रकारों को भनक तक नहीं थी और बाद में सरकार ने आतंक के आरोप में उन्हें 6 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। अमेरिका की फॉरेंसिक कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर टर्की की अदालत ने इन सभी को रिहा किया है। भारत सरकार पनामा पेपर्स के मामले में जांच कर रही है। पनामा पेपर्स भी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने खोज निकाला था। इसमें दुनिया के 180 से अधिक समाचार संगठनों के पत्रकारों ने मिलकर करोड़ों रिकॉर्ड छान मारे थे। ठीक उसी तरह से पेगासस मामले में भी दुनिया भर के 16 समाचार संगठनों के 80 से अधिक पत्रकारों ने मिलकर काम किया, लेकिन पनामा पेपर्स की जांच करने वाली सरकार ने पेगासस पर्दाफाश की जांच से इनकार कर दिया।
आज की जो हमारी रिपोर्ट है वो भीमा कोरेगांव केस में 5वीं रिपोर्ट है इस साल। इनके द्वारा हम ये बता पाए हैं कि कैसे रोना विल्सन और उनके साथी जो 3 साल से ज्यादा जेल में हैं, उनके डिवाइसेस हैक किए गए एक के बाद एक। फरवरी में हमने बताया था कि रोना विल्सन का लैपटॉप हैक हुआ है और उसके ऊपर दस्तावेज प्लांट किए गए जो पुलिस ने चार्जशीट में उनके खिलाफ एविडेंस दिखाई है। ये जांच की थी आर्सेनल कंसल्टिंग ने, एक अमेरिकन कंपनी है जिनको विल्सन के लॉयर्स ने उनकी एक लैपटॉप की क्लोन्ड कॉपी दी थी। जुलाई में हमने पेगासस प्रोजेक्ट के तहत ये बताया कि विल्सन और उनके 7 साथियों का नंबर एक लिस्ट में पाया गया जिसमें कुछ लोग पेगासस से टारगेट हुए थे। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आर्सेनल के द्वारा हम ये कंफर्म कर पाए कि जो फोन का बैकअप उस कंप्यूटर विल्सन के कंप्यूटर के बैकअप में था वो पेगासस से इन्फेक्टेड था। इसकी जांच हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी करवाई। ये जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उन सब की जांच आर्सेनल के अलावा हमने विशेषज्ञों से करवाई हैं अमेरिका, कनाडा और यूरोप में, और उन सब ने इनकी फाइंडिंग्स को सही बताया है। सबसे जरूरी बात यह है कि विल्सन का लैपटॉप 2016 में हैक हुआ और उनका फोन 2017 में पहली बार, और ये दोनों चीजें हुई हैं भीमा कोरेगांव और एल्गार परिषद के प्रोग्राम से पहले जिसके बेसिस पे ये पूरा केस उनके अगेंस्ट है।
2018 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस रंजन गोगोई ने भी कहा था कि तरह तरह के सवाल उठाने वाले जज स्वतंत्र पत्रकार लोकतंत्र के पहले मोर्चे के सिपाही हैं। भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भी कहा है कि खोजी पत्रकारिता मीडिया से गायब होती जा रही है।
आई एम रिमाइंडेड व्हाट गांधी जी सेड अबाउट न्यूज़पेपर्स। आई कोट, द न्यूज़पेपर शुड बी रेड फॉर द स्टडी ऑफ फैक्ट्स, दे शुड नॉट बी अलाउड टू किल द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग अनकोट। आई होप द मीडिया इंट्रोस्पेक्ट्स and test itself against his words of Mahatma.
रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है. उन्होंने अपना पुरस्कार दुनिया भर के खोजी पत्रकारों के समुदाय को समर्पित किया है. पिछले 15 साल में दिमित्री मुरातोव की समाचार एजेंसी नोवाया गजेटा के 6 खोजी पत्रकारों की हत्या हुई है. इस भ्रम में मत रहिएगा कि सरकारों को प्रेस का ख्याल आ गया है. उन्हें पता है कि भारत के किसानों की तरह दुनिया की जनता मीडिया के खेल को समझ गई है और जनता जानती है कि किसकी वजह से मीडिया का सत्यानाश हुआ है. जो बीमारी का कारण है वही आला लेकर डॉक्टर बना घूम रहा है, तो सावधान रहिएगा. इसीलिए सरकारें मीडिया को लेकर इन दिनों अच्छा अच्छा बोल रही हैं. डेमोक्रेसी समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त प्रेस को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया है, जबकि मई 2019 में प्रधानमंत्री ने इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा और रविश तिवारी को दिए एक इंटरव्यू में एक बात कही थी. जब प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट की बैठकों की तारीफ कर रहे थे तब एक सवाल आता है. सवाल यह है कि लेकिन हमें न्यूज के रूप में क्या मिलता है. अंग्रेजी में था, बट व्हाट डू वी गेट एज न्यूज. इसके जवाब में प्रधानमंत्री कहते हैं, ये आपकी समस्या है. मैं अलोकतांत्रिक नहीं हूं. मैं दिल्ली में 250 लोगों से 3 घंटे के लिए मिला हूं. सबसे खुली चर्चा हुई है. मैं मानता हूं कि मीडिया में सरकार की सोच के साथ साथ लोगों की सोच भी पारदर्शी होनी चाहिए. खबर छपती है या नहीं, लोकतंत्र में यही एक चीज नहीं है. 7 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जिस मुक्त प्रेस को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य बता रहे हैं, उन्हीं का यह बयान है कि खबर छपती है या नहीं, लोकतंत्र में यही एक चीज नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है. काशी कवरेज के समय 2 दिनों तक लगातार टीवी पर रहते हैं, लेकिन उन्हें लेकर एक सवाल नहीं उठाया जाता है कि इतना आलिशान भव्य समारोह क्यों हो रहा है, किसके खर्चे पर हो रहा है. प्रधानमंत्री दिन भर मीडिया में रहते हैं, टीवी के सामने रहते हैं, मगर पत्रकारों के सवालों से दूर रहते हैं.
CNN is fake news. I don't take questions.
Don't be. I'm not going to give you a question.
Can you stay categorical?
You are fake news.
I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better.
Let me ask. If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried?
That's enough.
Mr. President,
you are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हर दिन मीडिया को फेक कहा करते थे, CNN को फेक न्यूज कहा करते थे, लेकिन उनके व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी बंद नहीं हुई. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से सवाल तय नहीं होते हैं. जिसकी बारी आती है वो सवाल पूछ लेता है, राष्ट्रपति जवाब देते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो अमेरिका की तरह खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा भारत में शुरू कर सकते हैं. अगर हम जैसे पत्रकारों से समस्या है तो गोदी मीडिया के पत्रकारों को ही बुलाकर ये खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है. कम से कम भारत की जनता पत्रकारिता का नमूना ही देख लेगी. इस कड़ी में खोजी पत्रकारिता को लेकर दिए गए चीफ जस्टिस एनवी रमना के बयान को देखना चाहिए. वे मसले को जनता के बीच प्रमुखता से लाने में मदद कर रहे हैं, जिस पर मीडिया भी बात नहीं कर रहा है. तब भी नहीं जब खोजी पत्रकारों को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, और तब भी नहीं जब जो बाइडेन खोजी पत्रकारों की मदद के लिए ग्लोबल फंड बना रहे हैं.
एज ए पर्सन हुज फर्स्ट जॉब वाज दैट ऑफ अ जर्नलिस्ट, आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू शेयर ए फ्यू थॉट्स ऑन प्रेजेंट डे मीडिया. The concept of investigative journalism is unfortunately vanishing from the media canvas. It is true, at least in the Indian context. When we are growing up, we eagerly look forward to newspapers exposing big scandals. The newspapers never disappointed us those days. In the past, we have witnessed newspaper reports on scandals and misconduct creating waves leading to serious consequences. Barring one or two, I don't recall any story of such magnitude. Everything in our garden appears to be rosy. I leave it to you to arrive at your own conclusions.
Yeh behas मीडिया के बीच होनी चाहिए थी, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर उठ गया, जो कि गलत भी नहीं था। 25 नवंबर 2019 को खोजी पत्रकार नितिन सेठी ने पैसा पॉलिटिक्स के नाम से हफ पोस्ट के लिए 6 रिपोर्ट की श्रृंखला फाइल की, जिसमें दिखाया कि किस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कानून को पास कराने के लिए संसद से लेकर जनता के बीच सरकार ने कई तरह की बातें कही जो सही नहीं थी। लोग इस रिपोर्ट को लेकर पूछने लगे कि इस मामले में सुनवाई कब पूरी होगी, क्योंकि इसकी फाइल में इलेक्टोरल फंड से लेकर की गई खोजी पत्रकारिता भी शामिल है। हाल के दिनों में कई मामलों में कोर्ट ने कई पत्रकारों की गिरफ्तारियों पर रोक लगाई है, लेकिन पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मामला कहीं ज्यादा बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। इन सब अंतर विरोधों के बीच सुप्रीम कोर्ट लगातार मीडिया के खोखलेपन को उजागर कर रहा है। कोर्ट के ही फैसले बता रहे हैं कि पुलिस किस तरह से पत्रकारों को फंसा रही है। पत्रकारिता करना जेल जाना और मुकदमों से उलझना हो गया है, और इस बहस से सरकार चुपचाप गायब है। प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के सम्मेलन में बोल आते हैं कि मुक्त प्रेस लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, वही प्रेस उन्हें हेडलाइन भी बना देता है, लेकिन इन सब बातों पर वे कभी नहीं बोलते हैं। इसी साल 26 अगस्त को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस रजनीश ओसवाल ने कहा था कि प्रेस की आवाज दबाने के लिए FIR एक मॉडल बन गया है। पत्रकार आसिफ इकबाल नायक ने 19 अप्रैल 2018 को जम्मू के अखबार अर्ली टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी। अख्तर हुसैन नाम के शख्स के साथ पुलिस हिरासत में टॉर्चर हुआ, पुलिस ने पत्रकार पर ही केस कर दिया। जस्टिस रजनीश ओसवाल ने कहा कि पुलिस ने आसिफ को चुप कराने का एक नायाब तरीका निकाला है, जो कि निसंदेह प्रेस की आजादी पर हमला है। मानहानि के मुकदमों, फर्जी FIR, बात बात में UAPA के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पत्रकारों को कोर्ट का चक्कर लगवाकर परेशान किया जा रहा है। सिस्टम को कुछ महीने बाद केस के फर्जी साबित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर डॉक्टर कफील खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना कि अवैध रूप से NSA लगाया गया है, लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ जिसने अवैध रूप से NSA लगाया। अदालत से जवाबदेही मांगी जानी चाहिए, लेकिन बहस की दिशा अदालत की तरफ नहीं, मीडिया के भीतर होनी चाहिए। खोजी पत्रकारिता को लेकर तमाम बड़े न्यूज चैनलों में सरकार के भीतर से खोज कर लाने वाली खबरें गायब हो गई हैं। इक्का दुक्का पत्रकार बचे हैं जो ये काम कर रहे हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में ही नितिन सेठी और श्री गिरीश जलिहल की रिपोर्ट बता रही है कि दाल की खरीद के नियमों में पारदर्शिता नहीं होने के कारण दाल मिल मालिकों को 4,500 करोड़ से अधिक का फायदा हुआ है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने नीलामी के दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि दाल खरीदने वाली सरकारी एजेंसी ने 2018 से लेकर अब तक 1,000 बार से अधिक नीलामी की है। उसमें कीमतों की न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई, जिसके चलते मिल मालिकों को लाभ छिपाने का मौका मिला। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो दस्तावेज देखे हैं उन्हें हमने नहीं देखे, यानी हम सत्यापित नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के दस्तावेजों को देखने परखने के लिए खास तरह के कौशल की जरूरत होती है। ऐसी रिपोर्ट केवल दिन रात की मेहनत से तैयार नहीं होती। पत्रकारों को कानून से लेकर कंपनी कानूनों और न जाने कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
केंद्र सरकार की एजेंसी नाफेड ने 2018 से दालों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी है। मिल मालिकों को मिलिंग चार्जेस के आधार पर बोली विजेता घोषित किया जाता था, लेकिन नाफेड ने इस आसान प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। मिल मालिकों को अब न्यूनतम संभावित मूल्य नहीं बताना होता, बल्कि आउटर्न रेशियो या OTR बताना होता है। इस नीलामी मेथड के अंडर 4,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाया गया है। OTR का मतलब है कि मिल मालिक कच्चे माल के तुलना में कितना अंतिम प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अगर 70 किलो प्रोसेस दाल के लिए 100 किलो कच्ची दाल चाहिए तो उसका OTR 70% होगा, लेकिन नाफेड ने OTR पे किसी भी तरह का लिमिट नहीं लगाया। यानी अगर 70 किलो प्रोसेस दाल के लिए 100 किलो कच्ची दाल चाहिए होती तो अब मिलर मुनाफा बढ़ाने के लिए 110 किलो या 120 किलो बताकर भी बोली विजेता बन सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। 2015 में CAG ने इसी नीलामी पद्धति को क्रिटिसाइज भी किया था। आंध्र प्रदेश में चावल की नीलामी में कम OTR बताकर मिल मालिकों को ज्यादा मुनाफा हुआ था और सरकार को 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। नाफेड RTI एक्ट के अंडर नहीं आता, तो उन्होंने किस बेसिस पे OTR अप्रूव किए ये पब्लिकली पता भी नहीं है।
शीघ्र ही जिस खोजी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, जिस किस्म की कहानियां वो बता रहे हैं, ये आसान नहीं है करना, क्योंकि कोई भी सरकार अपने दस्तावेजों में लिख के नहीं बोलती है कि वो चोरी करने वाली है। लेकिन हम जब जानते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो इलेक्टोरल बॉन्ड या ऐसे कई प्रकरणों से बहुत अमीर लोगों से पैसा लेके आती है, और कई बार वो ऐसे काम करती है जो उनके मुनाफे के लिए है, नागरिक के लिए नहीं है। खोजी पत्रकारिता इन्हीं सच्चाइयों को निकालने की कोशिश करती है, उन दस्तावेजों को निकालने की कोशिश करती है जिसमें सच्चाई छुपी है, और उनको पढ़ के ये जानने की कि कौन से लॉ तोड़े गए, किन नियमों को मोड़ा गया जिससे कुछ लोगों को मुनाफा हो, आप जैसे और मुझ जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से। खोजी पत्रकारिता में समय लग जाता है क्योंकि कोई भी फाइल आसानी से नहीं मिलती, कोई सरकार हम सब जानते हैं सिर्फ अपने तारीफ में लिखवाना चाहती है। इस समय मुश्किल है, आज ही कल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला था कि आजकल ऐसी खोजी पत्रकारिता हो नहीं रही है। सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मांगता है कि हमारी मदद करे वो आजकल नहीं करती। कुछ साल पहले हमने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे पर्दाफाश किया था, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना ऑर्डर नहीं दिया है। लेकिन हम लोग चाहे वो द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में हो या जहां कहीं और हो, इस किस्म की पत्रकारिता तभी कर पाते हैं जब आप जैसे लोग, दर्शक, सुनने वाले, पढ़ने वाले हमारे साथ खड़े हों। आसान नहीं होता है क्योंकि महानगरों में ये पत्रकारिता करने से नौकरियां चली जाती हैं, छोटे शहरों में तो जान भी चली जाती है कई बार, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि ये सब खबरें हम लाएं आपके लिए।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने दुनिया भर के खोजी पत्रकारों की कानूनी मदद के लिए फंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट मीडिया बनाया जिससे दुनिया भर के खोजी पत्रकारों की मदद की जाएगी, बड़ा अच्छा लगा हेडलाइन। लेकिन अमेरिका अपने ही खोजी पत्रकार जूलियन असांज और एडवर्ड स्नोडेन के मामले में क्या कर रहा है? दोनों विसिल ब्लोअर हैं। बाइडन ने अपने भाषण में विसिल ब्लोअर की सुरक्षा पर भी बात की थी, लेकिन जूलियन असांज और स्नोडेन को लेकर उनसे गंभीर सवाल होने लगे। भारत का मीडिया शायद इस प्रदर्शन को दिखाना ना समझे, इसके लिए खोजी पत्रकार होने की जरूरत नहीं है, बल्कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में होने की जरूरत है ताकि दिख सके कि आज वहां क्या हुआ। भारत सरकार और सेना के अफसोस प्रकट करने के बाद भी लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई। नगा स्टूडेंट फेडरेशन ने बड़ा प्रदर्शन किया है, पता चल रहा है कि लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। दूर के जिलों में चल रहे प्रदर्शनों की आग अब कोहिमा पहुंच गई है। नागालैंड के मौन जिले में सेना के हाथों 14 लोगों की हत्या का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। पुलिस ने FIR में इसे हत्या ही लिखा है। लोग इस मामले में इंसाफ चाहते हैं। सेना से असहयोग के नारे लग रहे हैं, बैनरों पर लिखा है अफ्सपा हटाने के पहले कितनी बार गोलियां चलेंगी। संसद में भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की मांग हो रही है। राष्ट्रीय उत्सवों से दूर रहने के नारे लग रहे हैं। छात्र यह भी मांग कर रहे हैं कि 6 दिसंबर को संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है वो गलत है, भ्रामक है, उसे वापस लें। गृहमंत्री के बयान पर भी लोगों को यकीन नहीं है। आप प्राइम टाइम देख रहे हैं, उस पर तो यकीन है। ब्रेक ले लीजिए।
कोहिमा बैप्टिस्ट पास्टर्स फेलोशिप की नोट एड्रेस एनो क्योंकि प्रेसिडेंट नगा स्टूडेंट फेडरेशन।
क्या ऐसा हो सकता है कि दवा की पट्टी के पीछे हर टैबलेट पर QR कोड हो जिसमें जेनेरिक दवा के नाम से लेकर उसके बनने और समाप्त होने की तारीख लिखी हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्रेयी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर स्मृति सिंह और सेंट स्टीफेंस अस्पताल के डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज इस बात को लेकर कई दिनों से जूझ रहे थे। एक दिन स्मृति सिंह ने अपना यह सुझाव नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया। स्मृति सिंह का यह आइडिया करोड़ों रोगियों के लिए राहत की खबर लेकर आने वाला है। परिमल की यह रिपोर्ट।
हमारे पास भी छोटे बच्चे हैं, वी आर केयर गिवर्स, वी ऑल्सो नीड मेडिसिन एंड वी मोस्टली डिपेंड ऑन मेमोरी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मेडिसिन हैव टू बी मेड एक्सेसिबल वेयर एक्सपायरी डेट शुड बी नोन टू अस, मतलब हमें एक्सपायरी डेट पता होना चाहिए। और वी शुड नो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और कितने एमजी का है।
जेएनयू से पढ़ाई करने वाली स्मृति देख नहीं पाती, पति शोभन भी देखने में अक्षम हैं, दो बच्चे हैं। इस साल अप्रैल में पूरा परिवार कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया। दवाइयों की लंबी लिस्ट और खुराक का अलग अलग लेखा जोखा, इससे परिवार की मुश्किलें और बढ़ गईं। स्मृति हाथ से टटोलकर दवा पहचानने की कोशिश करती रहीं, पर कई दवाइयां तो बाहर से एक जैसी ही थीं। उस वक्त उनको लगा कि दवाई की स्ट्रिप पर QR कोड हो तो परेशानी कम हो जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग को लिखा।
फिलहाल मुझे रिस्पांस नीति आयोग से मिला है, वीके पॉल सर से, और उन्होंने अश्योर किया है कि दिस वुड बी डन within 2-3 months ही विल मेक मेडिसिन एक्सेसिबल, ही इज कमिटेड टू इट।
मतलब QR कोड होगा।
यस, दैट्स व्हाट ही हैज अश्योर्ड मी।
अब देखो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो ये भी बताना चाह रही हूँ, ये कॉम्बिफ्लाम और O2 दिखने में डिफरेंट लग रहा है
जी,
लेकिन इसको टच करके देखो, अब ये टच करने में एक जैसा है
जी।
सपोज करो ये मुझे टेक इट
राइट,
घर में कोई नहीं है।
स्मृति दवाई की स्ट्रिप दिखाकर परेशानी बताती रही, बीमारी वाले पुराने दौर को दोहराती रही। कुछ इस तरह के QR कोड के जरिए मोबाइल पर आने वाले ऑडियो संदेश से इनकी परेशानी कम की जा सकती है। भारत में नहीं देख पाने वालों की तादाद लाखों में है, ऐसे में सरकार के एक फैसले का फायदा सिर्फ इनको ही नहीं, बुजुर्ग से लेकर आम लोगों तक पहुंचेगा।
जिस साइज में लिखते हैं वो मोस्ट पीपल सीनियर सिटीजंस मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखते हैं, पता नहीं चलता, पढ़ा नहीं जाता
जी।
और अगर जो डेट वाली हिस्से कट गई तो देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसमें एक्सपायरी पता चल जाएगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चल जाएगा, टैबलेट साइज पता चल जाएगा, मेजर साइड इफेक्ट्स पता चल जाएंगे, स्पेशल प्रिकॉशंस पता, सब कुछ पता चल जाएगा।
और दुनिया में पहली बार,
और ये दुनिया में पहली बार होगा।
समस्या अपने हल और हालात सुधारने को लेकर नई सोच को जन्म देती है। समस्या बड़ी आबादी की है और समाधान छोटा सा, तो सरकार की एक छोटी सी कोशिश बड़ी आबादी की राह आसान करेगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।